نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے علامات قیامت کا بیان اس موضوع میں سے آج ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے پچھلی کوئی کلاس مس کی ہو تو ان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہم قیامت کی علامتیں دیکھ رہے ہیں, جس میں سب سے پہلا ٹاپک ہم نے دیکھا فتنوں کا بیان, اور اس کو انشاءاللہ ہم بک کے اینڈ تک, بلکہ میں کوشش کروں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر اس کورس کے آخری دن میں ان سارے فتنوں کو ایک جگہ پائل اپ کر کے بات کر سکوں تو اس کی پریکٹیکل چیزوں کو ہم دیکھیں گے. تو اس میں فتنوں کو دیکھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر فتنے سے ریلیونٹ ایک ایک دعا بھی سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو موضوع اس وقت ہمارا چل رہا ہے وہ ہے علامات صغرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں بہت ساری ایسی علامتوں کا پتہ چلتا ہے جو قیامت کے قرب کا ذریعہ ہوں گی. آج ہم جس چیز سے کنٹینیو کریں گے, یہ کتاب جن ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے ان کے لیے یہ ہے کہ کتاب کا صفحہ نمبر 122 ہے, 122 ہے, اور ٹاپک کیا ہے, بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا. پیج بھی ایسے پلٹیں کہ آپ کی آواز نہ آئے, ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج جو ٹاپک ہمارے حصے میں آئیں گے ان کو دیکھیں گے اور پھر اس سے اپنے لیے عمل کی بات لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علامات صغرا, اس میں سے آج اگلی علامت ہے بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا, تشبہ و شیوخ بالشباب. پیج نمبر ہے 122 کتاب کے ناطے سے. قیامت سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے لوگ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے. اس بات کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے, ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. دو تین باتیں اس سے ریلیونٹ. پہلی بات آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں, ایک مال کی خواہش اور ایک لمبی عمر کی خواہش. حقیقت یہ ہے کہ عمر لمبی ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپانا زیادہ چاہتا ہے, اور سیاہ رنگ کے خضاب کی جو یہاں بات ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. اسلام خوبصورت لگنے سے نہیں روکتا, پہلی بات ہے. اسلام کا یہ نظریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ میرا گھوڑا خوبصورت ہو, میری سواری اچھی ہو, میرا کوڑا اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, نہیں, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. صرف اللہ کو کیا نہیں پسند کہ بطر الحق کی وغمت الناس, حق بات کو جھٹلا دینا, یعنی پتہ ہے کہ یہ بات گناہ ہے پھر بھی کرتے رہنا, اور لوگوں کو حقیر جاننا, یعنی اچھے کپڑے پہن لیے ہیں تو لوگوں کو ہم بالکل ہی پیچھے ڈال دیں. تو لہٰذا خوبصورت لگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا تو اس نے کنگھی نہیں کی ہوئی تھی, تو آپ نے کہا کہ اس کو کنگھی نہ ملی کہ یہ کنگھی کر لیتا. اسی طرح ایک شخص آپ کے سامنے میلے کچیلے کپڑوں میں آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو کہا, کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک خاص جبہ رکھا ہوا تھا جو وفود کے آنے پر پہنتے. اسی طرح بعض روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ آپ جمعے کے دن اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے تھے. تو اب ساری باتوں کو جمع کر کے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں یہ صرف بوڑھوں کا نہیں جوانوں کا بھی مسئلہ ہے. بعض دفعہ خوراکوں کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بعض کاسمیٹکس ایسے یوز ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے بھی بال سفید ہونے لگتے ہیں, اور بالوں کی سفیدی جو ہے وہ عمر میں 10-5 سال کا اضافہ کرتی ہوئی دکھتی ہے. تو کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ دوسروں کو دھوکہ ہم نہ دیں. عورت اور مرد کے زیبائش کرنے میں دو بہت بنیادی فرق اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ عورت وہ خوبصورتی اختیار کرے جس میں رنگ کھلا ہو. جیسے ہم لوگ اگر میک اپ کرتے ہیں, کوئی کلر لگاتے ہیں چہرے پہ, تو اس کی اجازت ہے, آف کورس شرعی پابندیوں میں رہتے ہوئے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے یا اپنے محرم رشتوں کے سامنے اظہار کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ پسندیدہ ہے. عورت کا عورت پن ہی اس کے سجنے سمرنے میں ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن عورت جو خوشبو لگائے وہ دبی ہونی چاہیے. اس کے برعکس مرد کا معاملہ کیا ہے کہ مرد ایسی آرائش کر سکتا ہے جس میں خوشبو کھلی ہوئی ہو, लेकिन उसका रंग दबाओ, यानी मर्द अपने मुंह पे फेस पाउडर नहीं लगा के बाहर आ सकते। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई, रह गई बात बालों की। काले रंग के खिजाब से मना किया गया, क्यों? कि इससे उम्र छुपती है। देखिए कि आप इस मामले को सिर्फ अपने हद तक ना सोचिए कि अच्छा अगर मैं बालों में काला रंग लगा लेती हूँ तो इस्लाम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि बस दफ़ा जब हम काला रंग लगा लेते हैं अपने बालों में तो हमारी उम्र 8-10 साल छोटी लगने लगती है। अब रिश्तों का मामला है, कोई ऐसे हकीकत में मामले होते हैं, और मैंने ऐसे एक दो केसेस सुने कि इंटरनेट के थ्रू रिश्ता तय हो रहा था लेकिन जब रियल में उस मर्द को देखा तो वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा था। तस्वीरों से भी फ़र्क पड़ता है। तो इस्लाम क्या चाहता है? कोई और रंग लगा लो, मसलन सुर्ख मेहंदी है, आप वो बालों में लगाते हैं, सबको पता है कि मेहंदी लगी हुई है। कोई भूरे रंग का अगर रंग लगाता है कोई हरज की बात नहीं। एक असूल याद रख लें बस, इससे ज़्यादा अभी हम बात कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप में से किसी का दिल चाहे कि इस पे मज़ीद बात लें तो सूरत निसा में हमने इस मौजू पे बड़ी डिटेल से बात की हुई है सबीलुल जन्ना में, कि किस तरह शैतान हमें खूबसूरती के नाम पर भी बाज़ दफ़ा अल्लाह की हदें तोड़ने वाला देता है। तो जिसको इंटरेस्ट हो पूछिएगा, बाद में आपको उस आयत का नंबर वगैरह बता देंगे। लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए। कोई मेकअप करता है तो साफ पता चलता है कि इसने मेकअप किया हुआ है, सबको पता है। ठीक है ना, इसमें धोखा नहीं है। लेकिन अगर आप काले बाल करते हैं और आप कहते हैं जी ये मेरे असली बाल है, तो हो सकता है कि किसी को धोखा हो जाए। तो लेकिन इसके बरक्स अगर आप कोई दूसरे रंग के कलर लगा लेते हैं जिससे पता लगता है कि देखने वाले को, तो फिर इंशाल्लाह उसकी इजाज़त है। तो खुलासा क्या है कि आप अपने बालों में मर्द या औरत दोनों के लिए सेम मसला है, इसमें सुर्ख मेहंदी लगा सकते हैं, इसी तरह कोई और ऐसा रंग जिससे लगे कि रंग लगाया हुआ है लगा सकते हैं। एक छोटी सी भी बात कह दूं कि अगर आप लगाते हैं और खुदा ना खासा कोई ऐसा केस है जो मैंने जिक्र किया शादी ब्याह का, तो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे एक सिर्फ साइड की बात बता रही हूँ कि जैसे बाज़ लोग कलर्ड लेंजेस लगा लेते हैं, इस्लाम इसको भी पसंद नहीं करता। एक वाक़ ऐसा हुआ था, शादी हुई, लड़की की आंखें ब्लू थी, बड़े इत्तेफाक से शादी हुई और कुछ दिन के बाद पता चला कि शादी टूट गई है। वजह क्या थी कि वो लड़का कहता है कि मेरा वीक पॉइंट शुरू से नीली आंखें थी और मैंने इस लड़की को इसकी ब्लू आइज़ की वजह से पसंद किया था। शादी के बाद पता चला कि जिस दिन वो उसको देखने गया था तो वो तो उस दिन लेंस लगाई हुई थी, तो शादी के बाद पता चला कि उसकी अपनी आंखें नहीं। देखिए फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम क्या चाहता है कि आप फेयर बेस्ट रहे। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ें जिससे किसी को धोखा हो जाए उससे बचना चाहिए। फिर अगली अलामत क्या है? हुब्बुन नासिल आइमतल खलूफ, अवाम का ना अहल हुक्मरानों को पसंद करना। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। क़यामत से पहले अवाम जानते बूझते हुकूमत की जिम्मेदारियां ना अहल और बददियानत लोगों के सपुर्द कर देंगे। इसकी दलील है सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए इस वक्त क़यामत का इंतज़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, अल्लाह के नबी अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी? आपने फरमाया, जब हुकूमत इन लोगों को दी जाए जो इसके अहल ना हो, तो क़यामत का इंतज़ार करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब आप इस बात को सामने रखते हुए आज पूरी दुनिया में फैला हुआ जमहूरियत का निज़ाम देखिए, डेमोक्रेसी कह लीजिए या जमहूरियत, एक ही बात है। अमूमन देखिए कि वोट गिने जाते हैं, एक पढ़े लिखे आलिम फाजिल तहज्जुद गुजार दीनदार और इसी तरह दुनियावी पढ़े लिखे शख्स का वोट और एक अनपढ़ जाहिल देहाती का वोट एक बराबर है। वो गरीब है, उसको कोई 100 का नोट दिखाएगा तो वो उसको वोट देने को तैयार हो जाएगा। इसके बरक्स आलिम जो है वो सोच के देगा। तो बास दफ़ा फिर लोग सिर्फ अपने ज़ाती फवायद की खातिर भी ऐसे लोगों को चूज़ कर लेते हैं जो उनको कुछ लालच दे देते हैं। हम तुम्हारे गांव में सड़क पक्की करवा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब ऐसे लोग हुक्मरान बन के आ जाते हैं तो फिर सब्र करने की बजाय उनके लतीफ़े बनाते हैं, कभी उनके बारे में गलत गलत बातें करते हैं। तो इस्लाम क्या चाहता है कि समझदार लोग हुक्मरान का इंतखाब करें और उसके बाद फिर उनकी रिस्पेक्ट करें। तो लिहाजा आज पूरी दुनिया में कमोबेश ये नुस्खा हर जगह। आपको एक छोटी सी नसीहत कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स को तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन बास ब्रदर्स और ख़ास तौर पे जो 40s 50s में पहुंचते हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं, उनका पसंदीदा मशगला सियासतदान बन जाते हैं। टीवी के टॉक शो सुनते हैं, ख़बरें सुनते हैं या फिर उनके लतीफ़े पढ़ते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम का मिजाज इससे बहुत फ़र्क है। तो आइमा कराम की भी अपने हुक्मरानों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर हमने गलत लोगों को चूज़ किया तो फिर हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके बारे में इस तरह घरों में बैठकर बात करें। इस अगली अलामत है हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। क़यामत के करीब मुसलमानों में दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत पैदा हो जाएगी, जिस वजह से काफिर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे। अब इस जुमले को सुनकर आप शायद इतना अलर्ट नहीं हुए, लेकिन जो हदीस आपके सामने रखूंगी इसको सुनकर यकीनन हम खौफ महसूस करेंगे और बल्कि अल्लाह के नबी की नबूवत के दिल से कायल हो जाएंगे अगर कहीं किसी के दिल में कमी हो। और हदीस के हज़रत सोबान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब काफिर उम्मतें तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगी जिस तरह खाने वाले एक दूसरे को दस्तरखान की तरह बुलाते हैं। एक आदमी ने अर्ज़ किया, शायद इस वक्त हम तादाद में कम होंगे। यानी एक नॉन मुस्लिम मुल्क दूसरे नॉन मुस्लिम मुल्क वाले को क्यों बुलाएगा कि शायद हम मुसलमान थोड़े हैं। सहन में सवाल तो यही आता है ना कि हो सकता है कि मुसलमान चूँकि थोड़े हैं इसलिए ऐसा होगा। तो आपने फरमाया, नहीं बल्कि तुम कसरत में होगे लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर बहने वाली झाग की मानित होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब ख़त्म कर देंगे और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा फरमा देंगे। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन से क्या मुराद है। तो आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। इस बात को मानते हुए मैंने जब भी फर्स्ट टाइम ये हदीस पढ़ी थी और अपने दरसों में ज़िक्र किया तो मेरे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। देखिए गैब से ख़बरें मिलती थी आपको, लेकिन जो बात आपने कल कही आज मनो अन सच होती हुई दिखती है। आज क्या ऐसा नहीं है कि जैसे आप खाने का टेबल लगा कर कहते आइए आप भी खाइए आप भी खाइए, चलो मिल के खाते हैं, क्या आज दुनिया के नक्शे पर हमें ऐसा नहीं दिखता कि नॉन मुस्लिम मुल्क चंद मुसलमान मुल्कों को मिलकर खाना चाहते हैं। आपने सीरत तो पढ़ी होगी, स्टूडेंट्स ने तो माशाल्लाह पढ़ी भी है, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं मैं आप सबको दावत दूंगी कि अगर आप इस्लाम का सही मिजाज समझना चाहते हैं, हत्ता के कुरान को भी समझना चाहते हैं, तो सीरत लाजिम है। आपका मिजाज कभी मोतदिल हो ही नहीं सकता अगर आप सीरत को नहीं पढ़ते। पढ़ के देख लीजिए बदर का मौका, मुसलमान थोड़े थे, कैसी फतह हासिल हुई। ओहद में एक वक्ती झटका आया लेकिन मामला बराबर हो गया, और उसके बाद से तबूक तक किसी एक जंग में मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। क्या वजह थी? क्या मुसलमानों के पास F-16 थे? क्या मुसलमान न्यूक्लियर बॉम्ब रखते थे? नहीं, मुसलमानों में एक खूबी थी कि वो दुनिया से ज़्यादा आखरत से प्यार करते थे, ज़िंदगी से ज़्यादा उनको मौत प्यारी थी। आज हम मुसलमानों के पास क्या नहीं है आपको शायद पता कि नहीं पता। पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक मुल्क है कि जिसके पास एटम बॉम्ब है। यानी पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम मुल्कों में किसी के पास एटम बॉम्ब है तो वो पाकिस्तान के पास है। फिर भी क्यों रोते हैं? फिर क्यों धमकियाँ जंग की? फिर क्यों महंगाई है? क्योंकि हुब दुनिया व कराहियतुल मौत। मुसलमान का असल हथियार जो है ना वो उसका अकीदा, उसकी सोच है, इस दुनिया से ज़्यादा आखरत से प्यार करना है। तो लिहाजा आज अगर हम इस बात को सुनते वक्त अपने दिल से इस ख्याल को निकाल दें कि जितना हम तरक्की करेंगे उतने कामयाब होंगे, नहीं, हम तरक्की करें, मेहनत करें, रिसर्च करें, लेकिन दुनिया से प्यार ना करें। हम जब दुनिया को अपना मकसद बनाते हैं, अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलता है कि दुनिया को हमने मकसद बनाया हुआ कि नहीं, तो अपनी सुबह शाम की दौड़ धूप से देख लें। मर्दों की दौड़ धूप, औरतों की दौड़ धूप, बच्चों की दौड़ धूप, हम सुबह किधर जाते हैं, घर से कितनी दफ़ा गाड़ी निकलती है, किस लिए निकलती है, हर बंदा खूब जानता है। आज के मुसलमान की नाकामी और उसकी बेबसी की बहुत बड़ी वजह यह है कि आज हमने काफिरों की तरह सोचना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आज दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, व रौदतुल काफिर, काफिर यहाँ मौज करे, मस्ती करे, ईट ड्रिंक बी मैरी, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुसलमान तो नहीं करता, तो कैसे दूर करें। अब ये भी तो एक सवाल है ना कि दिल से फिर दुनिया की मोहब्बत कम कैसे हो। तो आगे नज़रें लगा लें, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, आप सब इससे मुत्तफिक होंगे। आप देखिए कि आपको अपने घर में रखी हुई एक चीज़ बहुत प्यारी लगती है, आप सुबह शाम उसको सजाती हैं, संवारती हैं, बहुत उससे प्यार करती हैं। इतने में कहीं दूर जाते गुजरते रास्ते में बाज़ार में आपको उससे भी खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाती है, अब क्या हुआ? अपनी चीज़ दिल से उतर गई, अच्छा, आप तो इससे ज्यादा खूबसूरत चीज मार्केट में, धुन क्या लग जाती है क्या मुझे बोले ना। फिर कोशिश करते हैं, फिर ख्वाब देखते हैं, फिर शौहर को मनाते हैं, फिर किसी भी तरह जाके उस चीज को पाने के लिए मेहनत करके ले आते हैं। हम सब इस दुनिया को सोचें, हमारा आज का घर है जो कुछ भी इधर है। और अब आखिर को देखिए, सूरत आल इमरान की आयत 14 में अल्लाह ताला कहते हैं, जुजीना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए खूबसूरत बना दी गई शहवात की मोहब्बत, मिनन निसाई वल बनीना, औरतों में से, बीवियों से मोहब्बत, बेटों से मोहब्बत, वल कनातीर अल मुकंतरति मिन अज़हब वल फिद्दा। अल्लाह ने एक लिस्ट गिनवा दी, कहीं का वल खैल अल मुसव्वमा, कहीं हर्ष कह दिया कि ये दुनिया की मताओ मगरूर है, असल बात क्या है कि वल्लाहु इंदहु खैरुन, अल्लाह के पास इससे भी बेहतर है। तो जिसकी नजरें जन्नत पे लग जाएंगी, उसको दुनिया की ये मट्टी के घर अच्छे नहीं लगेंगे। हदीस में आता है कि जन्नत का एक घर, एक ईंट उसकी सोने की होगी और एक चांदी की होगी। सोचिए, और जन्नत अदन, एवर लास्टिंग जन्नत जिसको कहेंगे, उसकी एक ईंट जुमुर्द की है, ग्रीन कलर का पत्थर। कभी आपने जेवर में लगवाया हो तो बड़ा कीमती पत्थर होता है। और एक ईंट सुर्ख की, यानी जमुर्द, और दूसरा ओपल बोलते हैं इनको गालिबन, कुछ नाम है, और एक मोती की, पर्ल की। यानी आप में से किसी को अपनी शादी का बड़ा हार याद आ जाएगा, सुर्ख, सबज और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन। इतनी बड़ी बड़ी ईंटों के घर होंगे, जिसकी मट्टी कस्तूरी की, जिसकी खुशबू की चीजें। तो जिन लोगों के लिए इतनी प्यारी जन्नत अल्लाह ने तैयार की है, वो इस दुनिया के मट्टी के घरों में खो जाएं। और ये ज़रूरत के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके ये लेना, ये तो नाफरमानी की बात है। तो इस पे जितनी बात करूँगी कम होगी, लेकिन देख लीजिए कि आज हम कितनी तेज़ी से इस चीज़ की तरफ दौड़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, हमारे दिल से इस दुनिया की मोहब्बत निकाल दें। ये मांगने वाली चीज़ है। कहा करें कि अल्लाह इस दुनिया की मोहब्बत की जगह तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब अहब्बका, तेरी मोहब्बत उन चीज़ों की मोहब्बत जो तेरी दुनिया की चीज़ों से बेनियाज कर दें। अल्लाह के नबी की मसनून दुआएं, उसमें एक बड़ी प्यारी दुआ आती है कि अल्लाह जब दुनिया वाले दुनिया की चीज़ों से अपनी आंखें ठंडी करें, तो मुझे उस वक़्त तो अपनी याद से मोहब्बत देना, तेरी इबादत में मुझे मोहब्बत मिले, मैं तेरे चेहरे की लज्जत का सवाल करता हूँ। ये मफहूम हमें मुख्तलिफ दुआओं से मिलता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिल से दुनिया को कम कर दे। यकीन करें, इसके लिए आपको उम्रा भी करना पड़े तो करें। अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर दे। ये हिरस है, ये हवस है, ये हमें फिर कहीं का नहीं छोड़ती। फिर इसके बाद अगली अलामत क्या है? कसरत, शिर्क की कसरत होगी। क़यामत से पहले अरबों में दोबारा बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक दौस कबीले की औरतें, यानी जुल खलसा के बुत खाने में चक्कर ना लगाएं। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ये यमन का एक शहर है, यहाँ कबीला दौस रहता था और उनका एक बुत होता था। मुशरिक ज़माने जाहिलियत में वहाँ तवाफ करते थे। अब जब इस्लाम आया, फतेह मक्का के मौके पे, फतेह के बाद नबी सल्लम ने क्या किया था आपको पता? आपने अपने हाथ से खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े, और एक कबूतरी थी उसको तोड़ा, तस्वीरें मिटाई। हजरत अली के साथ एक सहाबी को भेजा कि जाओ सारी ऊंची कब्रें तोड़ दो, सारी दरगाहें और इस तरह के कब्रें जिन पे बिल्डिंग्स बनी उनको गिरा दो, और उसमें आपने लोगों के ये सब बुत तुड़वा दिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज फिर मुसलमान मुल्कों में भी इस किस्म की जगह हमें दिखने लगती हैं कि जहाँ लोग खाना काबा की तरह तवाफ तक करते हैं। आज आप देखिए, पाकिस्तान प्यारा मुल्क हमारा, अल्लाह के नाम पे लिया हुआ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आज वहाँ कितने बुतखाने हैं, कितनी कब्रें, कितनी दरगाहें हैं, और लोग इंसानों को पूछते हैं। इसी तरह बाज़ अरब कबाइल बुतों की इबादत शुरू कर देंगे और बाज़ कबाइल मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। हज़रत सुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। इनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले हाकिमों का सबसे ज़्यादा खौफ है कि वो दीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। मेरी उम्मत के बाज़ कबाइल अनकरीब बुतों की इबादत शुरू कर देंगे और बाज़ कबाइल मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। क़यामत से पहले तकरीबन 30 झूठे दज्जाल जाहिर होंगे, जिनमें हर एक दावा करेगा कि वो नबी हैं। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, इनकी हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती रहेगी, اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک عام ہوگا۔ اسی طرح اگلی بات، قیامت کے قریب لات اور عزیٰ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی۔ یاد رکھیے کہ یہ اس دور کے معروف بت تھے۔ جیسے کبھی آپ نے پنجتن پاک کا نام سنا ہوگا، بعض لوگ کچھ بزرگوں کو پوچھتے ہیں، بعض قبروں کو پوچھتے ہیں، تو اس دور میں لوگ ان ناموں سے چیزوں کو پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت 33 یعنی 33 کا ترجمہ۔ تو اب یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرک کا دور دورہ ہوگا۔ پھر اگلی چیز جو قیامت کے قرب کی علامت ہے وہ ہے کثرت البدعات، بدعات کی کثرت ہوگی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس تو اس کے بارے میں بہت ہی شرح صدر رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گیسٹ بھی ہیں۔ دیکھیے، بدعت کہتے ہیں نیکی سمجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے نہ کیا ہو۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھیں، آج کوئی کہتا ہے چلو میں 6 فرض کر لیتا ہوں، تو یہ 6ٹی نماز بدعت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت اتنا زیادہ اچھا وقت ہوتا ہے تو صرف 2 فرض کیوں پڑھوں، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بدعت ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیاوی ترقی کو بدعت نہیں کہتے، جس میں ہم کوئی مثال ہے کہ اب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بیٹھتے تھے، تو کیا یہ بدعت ہوا؟ نہیں، یہ دنیا کی ترقی ہے۔ ہم جہاز پہ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں اس کا ثواب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا لوگ دین کے نام پر بدعت میں پڑ جائیں گے۔ بدعت کی کثرت قرب قیامت کا فتنہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کہ کون میرے پاس آتا ہے۔ سوچیے ذرا، آپ اللہ کے نبی حوض کوثر کے پاس کھڑے ہیں اور اپنی امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرے امتی ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانیں گے۔ تب کچھ لوگ ہیں جن کے چہروں پہ وضو کی چمک ہے، یعنی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن فرشتے ان کو روک لیں گے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے۔ فرشتے کہیں گے، آپ نہیں جانتے، یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ حدیث کے راوی ابن ابی ملائقہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فتنوں سے بچنا اور ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ کی نظروں میں گناہگار کر دیں، اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں، کیونکہ دعا بڑی خوبصورت ہے۔ اللہم
اللہم
انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتنا۔ اس کا اگر ایک ایک لفظ میں ہم ترجمہ دیکھیں، تو لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ، اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم، نعوذ بك ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ان اس بات سے کہ نرجیا ہم لوٹ جائیں، رجوع کا لفظ ہوتا ہے نا اردو میں، وہی ہے یہ، ہم لوٹ جائیں، علا اوپر، اقابینا اپنی ایڑیوں کے، یعنی دین سے پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں، او یا نفتنا ہم فتنے میں پلٹ جائیں یا فتنے میں مبتلا کیے جائیں۔ تو اگر آپ کو، مجھے، کسی کو بھی اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں میں کسی ایسے کام میں نہ پڑ جاؤں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، تو یہ دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ تو بدعت سے بچنا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ ضرورت بہت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا مزاج بہت سمپل ہے، 5 وقت کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فرائض، اور اس کے بعد حقوق العباد۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے اسی پہ چلیں تو हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता कि हम कुछ और करें, लेकिन वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पे चलने की बजाय अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करते हैं और सुन्नतों को छोड़ देते हैं, जब लोगों को सुन्नत मुश्किल लगती है ना तो बिदअत आसान होती है। मैं चाहूँगी कि इस मौजू को आप ज़रूर सुने। कहाँ सुनेंगे? एक किताब है इसी सीरीज़ की, जिस सीरीज़ को हम पढ़ रहे हैं इत्तबाए सुन्नत के मसाइल, उसका आखिरी टॉपिक जो है वो बिदत के मसाइल है। तो उसको ज़रूर सुनिए और इंशाल्लाह आपका शरह सदर होगा, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाएं। हम तो नेकियां समझ के कई काम कर रहे थे, पता चला कि अल्लाह के नबी के सहाबा ने वो काम नहीं किए थे। अगली चीज़ है कसरत तिजारा, तिजारत की कसरत। तिजारत तो समझते हैं ना, ट्रेडिंग, बिजनेस, ठीक है। तिजारत इस कदर आम हो जाएगी कि लोग लिखना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। कैसे? हज़रत अमर बिन तगलब रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि माल आम हो जाएगा और बहुत बढ़ जाएगा, तिजारत आम हो जाएगी, इल्म जाहिर होगा। एक आदमी माल फरोख्त करेगा यानी बेचेगा, लेकिन फिर इनकार कर देगा, कहेगा नहीं पहले मैं फलां ताजिर से मशवरा कर लूँ, यानी बदहदी करेगा। और एक बड़े महल्ले में कोई लिखने वाला यानी मुंशी या मुहर्रर वगैरह तलाश किया जाए तो नहीं मिलेगा। इसे निसाई ने रिवायत किया। चंद बातें इसमें हम सबके गौर की। पहली बात देखिए कि माल बहुत होगा। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में माल कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा है, पहले इस तरह से माल आम नहीं होता था। दूसरी बात देखिए, तिजारत आम होगी है। कितने स्टोर्स हैं आज? आज से अगर 20 साल पहले इसी शहर का हाल हुलिया आपके जहन में हो तो कैसा था? आज ज़्यादा हो गए ना चीज़ें। आज ज़्यादा है मार्केट में कि कम है? ग्रोसरी स्टोर में चले जाएं, 10 किस्म के तो आपको सीरियल दिखेंगे, 6 किस्म का दूध दिखेगा, 20 किस्म की ब्रेड दिखेगी, तो चीज़ें आम हो गई। अब देखिए कि ये बातें उस वक़्त नबी की ज़ुबान से मिल रही हैं जिस वक़्त किसी को इन बातों की खबर ही नहीं थी। फिर इसी तरह देखिए कि लोग बदहदी करेंगे, सौदा बेचेंगे, लेकिन बाद में दूसरे को उससे ज़्यादा कीमत पे ख़रीदा देखकर पहले से अपनी डील तोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हमें दिखती हैं। फिर इसी तरह देखिए कि तिजारत इस कदर आम होगी कि औरतें भी मर्दों के साथ तिजारत में मदद करेंगी। है आज के दौर में ये इक्वलिटी के नाम पे, बराबरी के नाम पे औरतें भी मर्दों के साथ कमाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले सलाम सिर्फ जान पहचान वालों से किया जाएगा। तिजारत इस कदर आम होगी कि बीवी अपने शोहर की मुआविन होगी और क़तअ रहमी आम हो जाएगी। दो तीन बातें आगे एक वैसे अलग आएगी, जान पहचान वाली उसको वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ मौजू के अतबार से देखिए कि आज कितनी ही औरतें हैं जो बेचारी अपने बच्चों को उस तरह नहीं देख पाती जिस तरह देखने का हक है, और शौहरों के साथ सारा सारा दिन स्टोर्स में काम करती हैं, काउंटर्स पे बैठी हुई हैं, ऑफिस में हैं। हालांकि औरत का असल ठिकाना उसका घर होता है। कोई औरत अगर नहीं कमाती तो कल क़यामत के दिन वो गुनाहगार नहीं होगी, लेकिन आज देखिए। और एक कॉम्प्लेक्स हम मुसलमानों को दे दिया वेस्ट की तरफ से कि जब तक औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं करेंगी शायद वो कोई डिग्रेडेड मखलूक है। हालांकि आप देखिए हर चीज़ की एक जगह होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, इससे आपको औरत और मर्द का फ़र्क समझ आएगा। देखिए कि एक होती है कुर्सी और एक होता है मेज़। कुर्सी नीची होती है ना और झुकी हुई होती है, बेंडेड है। टेबल सीधा होता है और अकड़ा हुआ होता है। कुर्सी कहे कि मुझे क्यों नीचे किया और मुझे इस तरह मोल्डेड क्यों कर दिया, मुझे इस मेज़ के बराबर ऊपर कर दो, कर दीजिए, फ़ायदा उठा सकेंगे? अगर कुर्सी भी मेज़ ही जितनी ऊंची हो गई तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह इस मिसाल में आप देखिए कुर्सी की हैसियत जो है ना वो औरत की है। औरत के मिजाज में नरमी होनी चाहिए, कंफर्ट हो, शौहर को खुश करने वाली हो, हम्बल हो, झुकी भी हो। और मर्द एक हाथ ऊपर, अरिजाल कवामून अला निसा। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द का एक दर्जा औरतों पर ज़्यादा, अलैहिन्ना दर्जा, ठीक है। तो इस्लाम का ये मिजाज अगर हम अपने घरों में लेते हैं तो हमारे घरों में सुकून होगा। जब से औरत को मर्द के बराबर करने की कोशिश की गई, औरत मर्द तो नहीं बनी, हाँ एक बात हुई, औरत भी नहीं रही। औरत से वो सब तकाजे किए जाएं जो मर्द बाहर के दुनिया में पूरे करे, और उसके बाद घर आके काम भी औरत करे, सफाई भी वो करे और शौहर को खुश भी करे। तो इसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि डिवोर्स रेट कितना ज़्यादा है। तो औरतें मजबूरी में मदद कर सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, शर्त एक है कि अपने घर को निगलेक्ट नहीं करेंगी। कोई औरत, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, उसकी बेहतरीन जगह घर है। और जब औरत घर में होती है तो उस घर का नक्शा ही बिल्कुल फर्क होता है। फिर इसी तरह आप देखिए, एक और रिवायत है कि कतई रहमी आम हो जाएगी। आज ऐसा है, मैं आपसे ही पूछ लूं कि कितने साल हो गए आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से मिले हुए। बाज़ वक़्त छोटी छोटी बातों पे इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, माता परस्ती इतनी हो गई कि कमाने खाने में लगे रहते हैं और हम अपने रिश्तेदारों को उनके हक नहीं देते। पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं, कई ऐसे करीबी रिश्तेदार होंगे लेकिन हमने कभी उनको फ़ोन भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं। माल जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना अपनी ज़ात पे ज़्यादा लगता है, ये भी याद रखें। जब लोगों के पास माल थोड़ा होता था ना, तो रिश्तेदारों की मोहब्बत बहुत थी, छोटे छोटे घर थे और इस तरह लोग आके जुड़ के रहते थे। मुझे अपने वालिद की बात कभी नहीं भूलती, वो कहते थे कि हम छुट्टियों का इंतजार सिर्फ इस सोच के साथ कर रहे होते थे कि खाला के घर जाना है। और जब हम आखिरी दिन स्कूल से घर आते थे, खुशी में क्या छुट्टियां, तो खाला पहले से आके बैठी होती थी टांगा लेकर, और सामान बांधा होता था, बच्चों को बहन को लादा, चल मेरे साथ। और आखिरी छुट्टी पे रोते हुए ही आते थे, कई दफा सोचना बहन हम जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं जाना। तकल्लुफ कोई नहीं थे, जमीन पे बैठे तो बैठ गए, रोटी पे सालन रखा, अचार रखा, दाल नहीं, सब्जी नहीं, चटनी कुटी खा लिया। आज मुश्किलें हमारी जान पे, एक मेहमान 4 दिन बाद आने वाला होता है, हमारी जान पे पहले से बोझ पड़ा होता है। कितनी हमने अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर ली, और कोई खुश तो नहीं है। वो तब भी खुश थे, आज अब 10 चीज़ें बना के रखे जाते हुए अगला ये बात ज़रूर कर जाएगा, इतना पकाने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, आप खुद ही हंस पड़ी है, मुझे नहीं था याद। इतना कुछ पकाती हैं ये, इनके घर चले जो गम पड़ जाता है कि अल्लाह खैर करे, बच के वापस हम आ जाए। फिर भी कहती है मैं कुछ पका नहीं सकी हैं। तो मैं इनको अक्सर कहती हूँ, आप एक दफ़ा जो बुलाती हैं तो आप 4-6 दफ़ा बुला लिया करें, एक एक चीज़ बनाएं ताकि इंसान खाए तो उसको मज़ा तो आए। तो बहरहाल इतना ही काफ़ी है आपके लिए, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फिर एक और रिवायत है तारिक बिन शहाब से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। कौन सी? जान पहचान के लोगों को सलाम कहना, तिजारत का आम होना, हत्ता कि बीवी अपने शोहर की तिजारत में मुआविन होगी, कतअ रहमी, झूठी शहादत, सच्ची गवाही का छुपाना और कलम का जाहिर होना। तो ये मुस्तद अहमद की रिवायत है। तो ये सारी बातों को सुनते वक्त हम देख सकते हैं कि ये बात कितनी सच है। एक और इसके बारे में है, जगह जगह तिजारती मराकज कायम होंगे। तिजारती मराकज को आज के दौर में हम क्या कहते हैं? मॉल्स, शॉपिंग मॉल। कितनी जल्दी बोल रहे हैं सब, फेवरेट जगह है ना। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि फितने जाहिर ना हो, झूठ की कसरत हो जाएगी, तिजारती मराकज़ आम हो जाएंगे, वक्त घट जाएगा, हरज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अर्ज़ किया गया कि हरज क्या है? आपने इरशाद फरमाया, कत्ल करना। इसे अहमद ने रिवायत किया। तो अब ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए।
मुझे लगता है इलामाते सुगरा सारी की सारी जाहिर हो चुकी हैं।
अलामाते सुगरा सारी जाहिर हो रही हैं। ठीक है जी, आपने क्या फील किया?
मैं तो काफी सालों से बल्कि यही कहती जा रही हूँ बच्चों को कि ये क़यामत के आसार शुरू हो चुके हुए हैं,
क़यामत के आसार शुरू हो गए हुए हैं।
बस हर रोज यही दुआ करते हैं, आने वाली जो हमारी नस्लों की नस्लें हैं, मैं तो उन तक के लिए दुआएं करती हूँ।
जी बिल्कुल ठीक है जी, कि रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक टूटे हुए, इसमें आप क्या कर सकती हैं? अपना हाथ बताइए कि आप इसको कैसे खत्म कर सकती हैं या कम।
अपने दिल को साफ रखें, अपनी तरफ
जी
से कोशिश रखें कि
बिल्कुल
अगर